समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खबरों का लेखा जोखा, इतिहास के पन्ने, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और आज का दिन क्यों है खास, इन सब के साथ मैं हूं नवीन सक्सेना और स्टूडियो में आज मेरा साथ दे रही हैं तन्वी तनेजा। नमस्कार तन्वी।
Hi Naveen, good morning and a very warm welcome to all our listeners who are tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani network. Well, yes, like Naveen said, that this is our news magazine program Aaj Savere, and till 8 o'clock we are going to be here and we'll be sharing a lot of information with all of you, be it national or international news, some metro city updates, historical information related to this particular day, that is 7th of December, and much more. So stay with us and I just want to wish you all a very happy Sunday.
और 7 दिसंबर, अगर काउंट किया जाए तो दिसंबर के अब बहुत कम दिन बचे हैं,
Absolutely. है ना?
और बहुत सारे ऐसे टारगेट हैं जो अभी आपने सेट तो किए होंगे लेकिन पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी भी कुछ दिन बचे हैं, तो दिन को अगर आप कन्वर्ट करेंगे घंटों में, सेकंड्स में, मिनट्स में, तो अभी भी बहुत वक्त बचा है ना? तो इस वक्त में आप थोड़ा सा अपने आप को और एक्टिव कर लीजिए और देखिए इन बचे हुए दिन में अगर आपके सेट टारगेट पूरे हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला साल तो आपका इंतजार कर ही रहा है।
एब्सोल्युटली, टेक न्यू रेजोल्यूशंस।
पर तन्वी, पता क्या होता है, न्यू रेजोल्यूशंस लिए जाते हैं, उनमें से कुछ रेजोल्यूशंस ऐसे होते हैं जो शुरू के 15 दिन में ही धाराशायी हो जाते हैं और फिर सोचा जाता है कि भाई कुछ तो नया ऐसा करेंगे कि इस साल कुछ ऐसा कर डालेंगे।
But that doesn't stop us to take new resolutions.
नहीं भाई, अगर आपने अपने आप को रोक ही दिया तो जीवन रुक जाएगा, जिंदगी रुक जाएगी, इसलिए बनाते चलिए। ठीक है, 100 में से 50, नहीं तो 25, नहीं तो 10 तो हो ही जाते हैं ना।
So yes, enjoy, relax, eat, smile, watch anything on your TV, cook something new, repeat and do whatever you want. This is a wonderful day, a wonderful year and 2026 is definitely approaching very fast.
बिल्कुल, तो इन बचे हुए दिनों को एंजॉय कीजिए। बहरहाल, आज का दिन आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं, चलिए अब आपको बताते चलते हैं।
लेट्स बिगिन आवर प्रोग्राम विद द न्यूज हेडलाइंस। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA हैज इश्यूड अ शो कॉज नोटिस टू इंडिगो CEO पीटर एल्बर्स एंड अकाउंटेबल मैनेजर इसिद्रो पोर्तुगेज, सीकिंग एक्सप्लेनेशंस विद इन 24 आवर्स ऑन द मैसिव फ्लाइट डिसरप्शंस दैट कॉज्ड सीवियर इनकन्वीनियंस एंड डिस्ट्रेस टू द पैसेंजर्स। द नोटिस said large-scale operational failures indicated significant lapses in planning, oversight and resource management. The government also directed Indigo to clear all pending passenger refunds without the delay. The Ministry of Civil Aviation has mandated that refunds for all cancelled or disrupted flights be completed by 8 p.m. today. To ensure seamless grievance redressal for passengers, the government has asked Indigo to set up dedicated support and refund facilitation cells.
और इस बीच रेलवे ने बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने और यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कुछ विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है और इसके चलते रेलवे विभिन्न डिवीजनों में 89 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। पुणे से बेंगलुरु, पुणे से दिल्ली और मुंबई से दिल्ली सहित विभिन्न मार्गों पर 14 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की गई है। वहीं भिवानी से मुंबई और मुंबई से शकुर बस्ती सहित कई मार्गों पर 7 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी और उधर चेरालपल्ली से शालीमार, सिकंदराबाद से चेन्नई एग्मोर और हैदराबाद से मुंबई तक 3 विशेष गाड़ियां चलाई जाएंगी।
The inaugural ceremony of the upcoming UNESCO meeting on the safeguarding of intangible cultural heritage will be held today at the Red Fort in the national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will attend the event as the chief guest, Union Minister Gajendra Singh Shekhawat said yesterday. Speaking to the reporters ahead of the 20th session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, ICH, which will take place from tomorrow until 13th of this month at the Red Fort, Shekhawat noted that this marks the first time India is hosting a session of the UNESCO panel.
और अब दिल्ली के लाल किले से हम आपको लेह लिए चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख के लेह में कई बुनियादी ढांचा और संपर्क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्योक सुरंग का उद्घाटन भी शामिल है। नई सड़कें, पुल और सुरंगें, ये परियोजनाएं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अग्रिम इलाकों के साथ साथ अन्य राज्यों के दूर दराज गांवों में भी संपर्क को बेहतर बनाएंगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह उद्घाटन समारोह में वर्चुअली शामिल होंगे। राजनाथ सिंह सुबह 10:30 पर श्योक सुरंग का उद्घाटन करेंगे।
The 11th India International Science Festival, IISF, organized by the Union Ministry of Science and Technology, started at the Shehra Ground, Panchkula, yesterday. The festival will continue until 9th of this month. Union Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, formally inaugurated the festival. While inaugurating the IISF, Union Minister of State for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, said that the purpose of organizing such festivals every year is to educate today's young generation and celebrate the achievements of science. In his address, Dr. Jitendra Singh emphasized the importance of consistency even after achieving significant milestones.
To be heard on the objective parameters you meet, you have two basic prerequisites. A, that you have to be consistent. B, you have to register certain landmarks or certain milestones for which you are referred again and again. And in the last 11 years, we have seriously followed this universally accepted mantra. We have registered milestones for which we are being referred across the world as a global success story. For example, in the space Chandrayaan 3, halanki chand ki dharti par aaye se 50 saal pehle America ne mana उतारा। He had a small straw. He made that famous statement which became very popular. One small step for man, blind step for man blind. लेकिन आगे पीछे पानी है, वही दिखाई दिया आपको। वो हमारे चंद्रयान ने 50 साल के बाद जाकर के पानी का जल के बने का प्रमाण लाया और एक कल्पना दी दुनिया में मानव जीवन की संभावनाओं पर भी शोध किया जा सकता। So that is a milestone for which the world is bearing us.
On this occasion, astronaut group captain Shubhanshu Shukla shared his experiences with the students and young scientists. He said that the science sector in India is progressing a lot. It is quite inspiring for Indians that India is becoming self-reliant in the field of science. He said that when India goes to the moon now, it will stay there for a long time. And he urged all Indians to contribute towards making India a developed nation by 2047. Besides, senior scientists and researchers from ISRO, DRDO and other leading scientific institutions have also arrived who will participate in various sessions and dialogue programs. The Mahotsav will also include interactive sessions among scientists and various public relations activities as per the national needs.
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद नगर निगम की 1500 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। ये परियोजनाएं आवास, ढांचागत विकास और जन सुविधाओं से संबंधित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ब्रह्म कुमारी के ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम के रजत जयंती वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति रिट्रीट सेंटर के 24वें वार्षिक दिवस समारोह का औपचारिक उद्घाटन करेंगे, जिसके साथ ही आध्यात्मिक सेवा, ध्यान प्रशिक्षण और मूल्य आधारित पहलुओं के 25 वर्ष पूरे होने के वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव की शुरुआत होगी। एक खबर जो इतनी अच्छी नहीं है, बात गोवा की। गोवा के अरपोरा के एक नाइट क्लब में कल देर रात आग लग गई और इसमें 23 लोगों की मौत हो गई। यह आग सिलेंडर विस्फोट से हुई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि मृतकों में अधिकांश क्लब के रसोई कर्मचारी और 3 या 4 पर्यटक शामिल हैं। बात अब खेलों की दुनिया से, तो सबसे पहले उस खबर की जिसका आपको इंतजार है कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे एक दिवसीय मैच में हरा दिया है और श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। यह मैच विशाखापट्टनम में खेला गया अंतिम मुकाबला था, जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने 271 रन का लक्ष्य जो था वो 39 ओवर और 5 गेंद में 1 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने सर्वाधिक 116 और विराट कोहली ने 65 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। तो ये थी कुछ खास खबरें अब तक की। और अब नजर आपके शहरों की, तो सबसे पहले हम चेन्नई चलते हैं तन्वी के साथ.
Absolutely. Let's talk about Chennai. The National Green Tribunal, NGT, Southern Zone and the Southern State Pollution Control Boards have begun a two-day regional conference on environment in Chennai yesterday. The event focuses on major ecological issues facing the southern region, including coastal protection, waste management and environmental law enforcement. The conference was inaugurated by Supreme Court Judge Justice M.M. Sundaresh. In his address, he emphasized that returning to tradition could lead to a better world and shared his personal reflection on communities affected by the dying industry pollution. The conference will continue today with technical sessions on environmental governance and waste management. And now let's talk about Delhi.
Delhi mein aaj Bharat ka pehla शहर केंद्रित एआई अभियान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैंपेन का उद्घाटन किया जाएगा. दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी. श्री सूद ने कहा कि यह भारत का पहला शहर केंद्रित एआई अभियान है जिससे छात्रों को सशक्त बनाने, रचनात्मकता को बढ़ावा देने और एआई संचालित भविष्य के लिए तैयार युवाओं की एक मजबूत श्रृंखला बनाने के लिए तैयार किया गया है. वहीं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कल दिव्यांग बच्चों द्वारा आयोजित दिव्यालंपिक्स 2025 में वो शामिल हुए. इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांग विद्यार्थियों को सफलता के लिए शुभकामनाएं दी. उन्होंने बताया कि ये ओलंपिक दिल्ली के 150 स्कूलों के हजारों दिव्यांग विद्यार्थियों को एक साथ लाने का काम कर रही है. वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने कल नई दिल्ली में अभिजीत जोग की पुस्तक भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग ओवर अ रियल आइडेंटिटी का विमोचन किया. कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, कला केंद्र ट्रस्ट के अध्यक्ष राम बहादुर राय सहित कई विशिष्ट अतिथि शामिल थे.
And moving towards Bangalore, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman reaffirmed the Government of India's commitment to strengthening mental health care and neurological sciences, praising NIMHANS for its leadership in the field. Speaking virtually at the 28th convocation of NIMHANS yesterday, the minister announced central government approval for two major projects at NIMHANS, a 300-bed trauma care hospital at the North Bangalore campus and a new four-story OPD complex at the main campus costing. The new OPD will house 590 clinics and raise outpatient capacity to more than 5,000 patients a day. Karnataka's Medical Education Centre, Dr. Sharan Prakash T. Patil, announced that the state has approved the establishment of two NIMHANS-like centres in Mysuru and Kalaburgi. And we have some more news about Bangalore itself. The Karnataka Home Department has launched Hygiene On Go, a mobile sanitation service for Bangalore Traffic Police. The service provides clean and safe washrooms for officers working long hours at busy junctions. As part of the project, three specially designed vehicles will operate daily from 8:30 a.m. to 7 p.m. in Thansisandra, Adugodi and Mysuru Road until March 2028. They will stop at 91 points to offer washroom access to on-duty staff. Each vehicle has separate toilets for men and women, GPS tracking, CCTV cameras and LED screens showing road safety messages.
बेंगलुरु से निकलकर अब आपको मुंबई शहर लिए चलते हैं, जहां सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार ने सशक्त सामाजिक संदेश, कलात्मक गुणवत्ता और प्रयोगशीलता के लिए चुनी गई 50 मराठी फिल्मों के लिए लगभग 14 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है. मुंबई में एक समारोह में उन्होंने कहा कि यह सहायता केवल वित्त पोषण नहीं बल्कि सामाजिक रूप से जागरूक और अभिनव सिनेमा को प्रोत्साहन देने के लिए है. उधर 12वीं राज्य स्तरीय अटल करंटक एकांकी नाटक प्रतियोगिता का समापन आज पनवेल स्थित आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के सभागार में पुरस्कार वितरण समारोह के होगा. बात लोक अदालत की. मुंबई यातायात पुलिस ने घोषणा की है कि इस महीने की 13 तारीख को होने वाली लोक अदालत में लंबित ई चलानों का निपटारा नहीं किया जाएगा और न ही उनमें छूट दी जाएगी. उन्होंने लोगों को चेतावनी दी है कि वो सोशल मीडिया पर चल रहे उन झूठे संदेशों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें जिसमें दावा किया जा रहा है कि उस दिन यातायात जुर्माना कम कर दिया जाएगा.
And from Mumbai, let's go to Hyderabad. The Telangana state government has geared up for the two-day Telangana Rising Global Summit 2025 tomorrow at Bharat Future City in Hyderabad, with Chief Minister A. Revanth Reddy personally overseeing the arrangements. Ministers and senior officials are ensuring that the two-day conference is organized on par with the global events like the World Economic Forum at Davos. The state government will unveil the Telangana Rising 2047 vision document on the closing day, outlining the roadmap to transform Telangana into a $3 trillion economy by 2047. The conference is expected to bring together global leaders, industry heads, policy experts and representatives of international organizations for wide-ranging discussions on the state's development trajectory.
अब सांस्कृतिक शहर कोलकाता का रुख करते हैं। कोलकाता आज अपने सबसे बड़े आध्यात्मिक समागमों से एक उसके लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि सनातन संस्कृति संघ ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 5,00,000 स्वरों द्वारा गीता जप नामक एक विशाल आयोजन हो रहा है। सनातन संस्कृति संसद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 3 मंच होंगे और लगभग 150 संत इसमें भाग लेंगे। इस समागम की अध्यक्षता गीता मनीषी महामंडल के स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज कर रखे हैं। पद्म भूषण से सम्मानित साध्वी रितंबरा मुख्य अतिथि होंगी, बाबा रामदेव विशिष्ट अतिथि और धीरेन्द्र शास्त्री विशिष्ट अतिथि होंगे। भारी भीड़ की उम्मीद की जा रही है। इसके चलते पूर्वी रेलवे ने सियालदा से हावड़ा मंडल विशेष ईएमयू ट्रेनें चलाएंगी। सियालदा मंडल 14 विशेष ट्रेनें चलाएगा, जबकि हावड़ा मंडल 6 विशेष ट्रेन चलाएगा। तो ये थी आपके शहर की खबरें। अब मौसम का रुख कर लेते हैं, जानते हैं कि चेन्नई में क्या कुछ हो रहा है।
Chennai is expected to have partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature will be around 24 degrees Celsius and the maximum will be around 30 degrees.
Delhi ki baat karein to Delhi mein sardi apne pair lagbhag pasar hi chuki hai. दिन और रात के टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है। आज मौसम विभाग ने कहा है कि हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान एक बार तो 24 डिग्री को छू ही जाएगा और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
Bangalore is expected to have forecast mist. The minimum temperature is expected to be 17 degrees and maximum will be around 27 degrees.
मुंबई न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम 33 डिग्री का अनुमान है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।
हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई बट विद हेज। द टेम्परेचर विल हावर समवेयर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 15 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस।
और मौसम विभाग कहता है कि कोलकाता में भी आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। तो ये था आपके शहर का आज का मौसम। और अब आज के दिन का इतिहास। वो शानदार दिन जो आज आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन आज के दिन से बहुत सी घटनाएं जुड़ी हैं। 1856 में भारत में पहली बार कलकत्ता में एक हिंदू विधवा का कानूनी रूप से पुनर्विवाह किया गया था। ये एक बहुत बड़ी खबर है इतिहास की।
Absolutely. Adding to this, this ceremony was held in Calcutta, like you said, and championed by the reformer Ishwar Chandra Vidyasagar, helped legitimize an act that had previously been nearly impossible. This moment marked a significant break from the rigid social customs of the period. And if we talk about the year 1732, let's go back a little bit. The Royal Opera House opened its doors at Covent Garden in London, England.
1900 में आपको लिए चलते हैं। 1909 में बेल्जियम के रसायनज्ञ यानी रसायन विशेषज्ञ लियो बैकलिन ने प्रथम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट के लिए पेटेंट प्राप्त किया था और प्लास्टिक उद्योग की स्थापना की थी। और 1934 में प्रसिद्ध अमेरिकी एविएटर विले पोस्ट ने जेट स्ट्रीम की खोज की थी।
एंड अ लिटिल बिट बैक 1825 इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टीम पावर्ड वेसल द एंटरप्राइज रीच्ड कलकत्ता व्हिच इज नाउ कोलकाता यूजिंग स्टीम पावर marking a milestone in the introduction of steam navigation to India.
इतिहास में अगर आपका शौक है तो पर्ल हार्बर को आज गूगल पर जरूर खोजिएगा, क्योंकि 1941 में वो आज ही का दिन था जब शाही जापानी नौसेना ने 353 बम वर्षकों के साथ हवाई के ओहाउ स्थित अमरीकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर एक जबरदस्त हमला किया था, जिसमें 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैन्यकर्मी मारे गए थे, कई युद्धपोत नष्ट हो गए थे, और इस हमले के बाद अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया था।
एंड इफ वी टॉक अबाउट द ईयर 1972, अपोलो 17, द लास्ट मिशन ऑफ द यूएस अपोलो प्रोग्राम टू द मून वॉज लॉन्च्ड। द क्रू टुक द फेमस फोटोग्राफ ऑफ अर्थ नोन एज द ब्लू मार्बल एज दे डिपार्टेड।
इस तस्वीर के खास होने की एक विशेष वजह भी थी। दरअसल ये पहली बार था जब पृथ्वी की किसी तस्वीर में साउथ पोल भी नजर आया था, पर क्या खूबसूरत इसको नाम दिया गया था, ब्लू मार्बल।
Absolutely. If we talk about the year 1995, India successfully launched its multi-purpose communication satellite InSat-2C from the Guyana Space Center, marking a significant step for enhancing telecommunications, broadcasting and mobile services in remote Indian regions.
NASA ne aaj ke din 1966 mein ATS-1 satellite launch kiya tha. Is satellite mein black and white ek weather camera fit kiya gaya tha, ek mausam ki jankari dene wala camera fit किया गया था, और इस कैमरे ने पृथ्वी और चांद की साथ में तस्वीर ली थी, और यह पहली तस्वीर है जिसमें पृथ्वी और चांद साथ साथ दिख रखे हैं। और चलते चलते आपको बता दें कि आज ही के दिन 1825 में भाप से चलने वाला पहला जहाज इंटरप्राइज कोलकाता पहुंचा था, और दक्षिण अफ्रीका की धरती पर पहली बार कोई एक दिवसीय मैच आज ही के दिन 1992 में खेला गया था। तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से। और अब आज का दिन क्यों खास है, आज है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ये दिवस देश की सेना के प्रति सम्मान प्रकट करने का दिन है, उन जाबाज सैनिकों के प्रति एकजुटता दिखाने का दिन जो देश की तरफ आंख उठाकर देखने वालों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। सेना में रहकर जिन्होंने न केवल सीमाओं की रक्षा की बल्कि आतंकवादियों व उग्रवादियों से मुकाबला कर शांति स्थापित करने में अपनी जान न्यौछावर कर दी। सशस्त्र झंडा दिवस जाबाज सैनिकों और उनके परिजनों के प्रति नागरिक एकजुटता दिखाने का दिन है, यानी इस दिन हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो सैनिकों के सम्मान में, उनके कल्याण में अपना योगदान दे। जानते हैं तन्वी, आपने देखा होगा कि अक्सर अगर जब आप जाते हैं तो आज ही के दिन लोग छोटे छोटे झंडे आपके चेस्ट पर लगाकर आपसे कुछ दान करने को कहते हैं। ये वही सशस्त्र झंडा दिवस है जिसमें हम सब चाहते हैं कि हम उन लोगों के लिए योगदान करें जो अपने पीछे अपने परिवारों को छोड़ गए हैं, जो देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर गए हैं। एक खूबसूरत सा गीत है, शायद उससे बेहतर आज उनके लिए कुछ नहीं हो सकता।
कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
भी आज के दिन इकट्ठी की गई जितनी भी राशि होती है ना, वो सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से खर्च की जाती है, और मुझे लगता है कि भारत के हर नागरिक का फर्ज है, देश के हर नागरिक को चाहिए कि आज के दिन यानी झंडा दिवस के दिन कुछ ना कुछ योगदान जरूर दे।
That is absolutely correct. And this particular day, Armed Forces Flag Day, was first observed in 1949, and we're celebrating till date.
सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बागबन
साथ। This, but today is special because today is International Civil Aviation Day. The world is celebrating this particular day, highlighting the vital role global aviation plays in the economic and social development of the nations. The Union Nations, the United Nations General Assembly, UNGA, officially designated 7th of December as the International Civil Aviation Day in 1996. For this year, the observance continues. continues until under the theme of Safe Skies, Sustainable Future, which has evolved from an annual slogan into ICAO's long-term global vision. This year's celebration comes just after 1 year that the world marked the 80th anniversary of the Chicago Convention, the landmark 1944 agreement that established the foundation of modern international civil aviation.
और अभी ये बात सवेरे का एक और पन्ना पलटते हैं और याद करते हैं उन व्यक्तियों को जो जुड़े हैं आज के दिन से.
So let's talk about this particular person, and today is the death anniversary of Harry Morgan, an American actor whose television and film career spanned 6 decades. His major roles including Pete Porter in both December Bride and Pete and Gladys, and he was there in the TV series MASH and After MASH as well. He has appeared as a supporting player in more than 100 films.
आज पुण्यतिथि है हिंदी के साहित्यकार स्वयं प्रकाश की. उन्होंने मुख्य रूप से एक कहानीकार के रूप में ज्यादा प्रसिद्धि पाई. उपन्यास और हिंदी की कई ऐसी विधाओं को उन्होंने अपने कलम से समृद्ध किया. उनके मुख्य उपन्यास जलते जहाज पर, ज्योति रथ के सारथी, उत्तर जीवन की कथा बहुत प्रसिद्ध हुए.
And today is the death anniversary of Subrata Mitra, an Indian cinematographer. Acclaimed for his work in the Appu trilogy that was in 1955 till 1959, he is often considered as one of the greatest Indian cinematographers. At the age of just 21, Subrata Mitra, who never had operated a motion picture camera, began his career as a cinematographer with Satyajit Ray. And he worked on the legendary film that was Pather Panchali. He continued to work with him for many of Satyajit Ray's later films, and he got the National Film Award for Best Cinematography, and he also got Padma Shri for his cinematography in 1986. He has done multiple films, be it Devi, Kanchanjunga, The Householder, Mahanagar, Charulata, Shakespeare Wala, and many more. The list is very long.
आज जयंती है आधुनिक भारतीय संस्कृति और समाज शास्त्र के विख्यात विद्वान राधा कमल मुखर्जी की. उनका जन्म आज ही के दिन 1889 में पश्चिम बंगाल में हुआ था. उनकी अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र, इन विषयों में गहरी रुचि थी. डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने कई विषयों में 50 से अधिक ग्रंथों की रचना भी की थी और वो प्राच्य और पाश्चात्य दोनों विचारधाराओं में समन्वय के समर्थक थे. बात करें एक और व्यक्ति की तो गोविंद सिंह राठौड़. आज भारत के जाबाज सैनिकों में से एक गोविंद सिंह राठौड़ की भी जयंती है. उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस पदक प्रदान उन्हें किया गया था. गोविंद सिंह राठौड़ भारतीय राज्य राजस्थान के नागौर जिले के दामोई नामक एक छोटे से गांव में थे और जब वो 29 वर्ष के थे तभी दूसरी लाइट कैवेलरी में लांस डिफेंडर बन गए थे.
And today is the birthday of Ali Asgar, an Indian actor and stand-up comedian. He has appeared in many Indian TV serials and movies. He is commonly known for his role in Comedy Nights with Kapil as Dadi. So we have a dialogue from one of his famous films. Let's hear that.
I love my India. I love my India. वतन मेरा इंडिया, बोले तो चमन मेरा इंडिया. आई लो माय इंडिया.
भाई बोले तो मेरा कपड़ा है भाई.
मालूम है ये पासपोर्ट कहाँ छपवाया?
अरे मेरा पासपोर्ट तो मैंने आप. अरे वो है ना रेशु, वो अमेरिका से आया हूँ शादी के लिए आया भाई. नहीं मोटा भाई अभी बोले तो क्या है ना, मेरी माँ ना मरते वक्त मेरे को बोली कि बेटा शादी करना तो किसी इंडियन से करना, इसीलिए मैं अपना सारा कमाई ना बचा कर यहाँ इंडियन लड़की से शादी करने को आया. मेरी माँ कितनी खुश होगी ना.
आज महान क्रांतिकारी जतेंद्रनाथ मुखर्जी की भी जयंती है और उन्हें बागा जतिन के नाम से भी जाना जाता है. जतेंद्रनाथ मुखर्जी के बचपन का नाम था जतेंद्रनाथ मुखोपाध्याय और अपनी बहादुरी से उन्होंने एक बाघ को मारा था और बस उसी के बाद वो बागा जतिन के नाम से प्रसिद्ध हो गए. और युगांतर पार्टी बंगाल में वो क्रांतिकारियों के एक प्रमुख संगठन थी और जिसके वो नेता थे.
And today is the birthday of Milind Kaba, an Indian singer, songwriter, music producer and actor associated with Punjabi and Bollywood music. Let's hear one of his tracks titled Yaar Mor Do.
O le lo paisa te le lo pyar mainu mere yaar mod do. O kisse kam di ni eh mehngi kaar mainu mere yaar mod do. O
आज सवेरे के आज के संस्करण में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। चलते चलते मैं नवीन और तनवीर आपको एक विचार के साथ छोड़े जा रहे हैं। कहते हैं कि जिस इंसान के पास आशा होती है ना, उसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता।
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhata Hindi News Bulletin followed by Morning News in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.